الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے. امیر اہل سنت سے بچوں کے بارے میں سوالات. دعائے جانشین امیر اہل سنت. یا اللہ پاک, جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے بچوں کے بارے میں سوالات پڑھ یا سن لے, اسے دین و دنیا کی برکات سے مالا مال فرما کر دینی مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے بے حساب بخش دے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود شریف کی فضیلت. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھ پر درود شریف پڑھو, اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سالگرہ کس انداز سے منانی چاہیے؟ سوال. آپ کے رضائی یعنی دودھ کے رشتے کے پوتے حسن رضا اتاری بن علی رضا ماشا اللہ 13 جماد الاولی 1440 1440 سنہ ہجری کو 3 سال کے ہوئے. اس حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں نہ کیک کاٹا گیا اور نہ ہی اس طرح کی دیگر چیزیں ہوئیں, بلکہ نعت خوانی اور نیاز کا اہتمام کیا گیا. یہ ارشاد فرمائیے, کیا ہم اس موقع کو بھی حصول ثواب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ نیز بچوں کی سالگرہ کس انداز سے منانی چاہیے؟ جواب. سبحان اللہ, جس طرح حسن رضا کی سالگرہ یعنی برتھ ڈے منائی گئی وہ بہت ہی برکت کا باعث ہے, کیونکہ جس مکان میں یہ سلسلہ ہوا اس مکان میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا اور دعائیں مانگی جا رہی تھیں, اور ایسے موقع پر رحمت کا نزول ہوتا ہے. چنانچہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, نیکوں کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو جب نیکوں کے سردار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا اور ان کی نعت پڑھی جائے گی, کیا اس وقت رحمت نازل نہیں ہوگی؟ پھر جب رحمت کا نزول ہوگا تو جو لوگ وہاں موجود ہوں گے کیا وہ اس رحمت کی برسات میں نہیں نہائیں گے؟ اور جب یہ سب لوگ اس رحمت کی برسات میں نہائیں گے تو جس کی سالگرہ منائی جا رہی ہے وہ مدنی پھول بھی وہاں موجود ہوگا, تو کیا رحمت کے چھینٹے اس پھول پر نہیں پڑیں گے؟ اور جس پر رحمت نازل ہوگی کیا اسے برکت نہیں ملے گی؟ بے شک اس محفل سے دعائیں بھی ملیں گی اور برکات بھی حاصل ہوں گی. سالگرہ وغیرہ کے موقع پر اس انداز سے تقاریب اور محافل کا انعقاد کرتے رہنا چاہیے. البتہ جب بھی محفل نعت کا اہتمام کریں تو ایک مبلغ کو ضرور بلائیں جو سنت و بھرا بیان کرے, مدنی پھول دے اور اصلاح کی کوئی بات بتائے. الحمدللہ ہمارے یہاں دعاؤں کا رواج ہے تاکہ بچوں کو دعائیں اور ان کا ثمر بھی ملے اور آخرت میں بھی اس کا حصہ ہو. بچوں پر بزرگان دین کی نظر ڈلوانے کے فوائد. قرآن پاک میں دعا کی قبولیت کی بشارت موجود ہے. ادعونی استجب لکم, پارہ 24 سورہ مومن آیت نمبر 60. ترجمہ کنز الایمان, مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. جو بچے نیک بنتے, زیور علم سے آراستہ ہوتے اور دین متین کی خدمت کرتے ہیں, کیا بعید بچپن میں ان کو دعائیں ملتی ہوں اور ان دعاؤں کے اثرات کی وجہ سے وہ اتنا بڑا مقام حاصل کرتے ہوں؟ اگرچہ یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ میرے حق میں کس کی دعا قبول ہوئی ہے. پہلے کے لوگ اپنے بچوں کو بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی بارگاہ میں لاتے, ان کے لیے دعا کرواتے, اپنے بچوں پر ان کی نظر ڈلواتے اور ان سے دم کرواتے تھے. جب میرے لیے حفاظت امور کے مسائل نہیں تھے اور مجھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کی آزادی تھی، اس وقت میں نے بارہا دیکھا ہے کہ بڑی عمر کے لڑکے چھوٹے بچوں کو اٹھائے یا برتن میں پانی لیے مسجد کے باہر کھڑے ہوتے تھے تاکہ جو بھی نمازی آتا جائے اس بچے پر پانی پر دم کرتا جائے۔ اب بھی شاید ایسا کرتے ہوں، یہ ایک اچھا اور نیک کام ہے۔ اس طرح کرنے سے اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہوتی ہے اور خوب برکتیں بھی ملتی ہیں۔ بہرحال ہم سب کو بیان کردہ طریقے کے مطابق اپنے بچوں کی سالگرہ منانی چاہیے۔ دینی ماحول میں سالگرہ منانے کا انداز۔ سوال: دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بچوں کی سالگرہ منانے کا انداز کیا ہے؟ جواب: ہمارے دینی ماحول میں سالگرہ منانے کا انداز یہ ہے کہ محفل نعت کا پروگرام کیا جاتا ہے، پھر نیاز کا اہتمام کر کے اسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غوث پاک اور دیگر بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی بارگاہ میں نظر کیا جاتا ہے۔ ورنہ تو عام طور پر سالگرہ منانے میں کیک کاٹنا، شمعیں جلانا اور پھر بجھانا اور معاذ اللہ غبارے پھوڑنا ہوتا ہے۔ حالانکہ غبارے پھوڑنا جائز نہیں، کیونکہ مال کا ضائع کرنا ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کے متعلق یہ نہ کہا جائے کہ یہ دعوت اسلامی والا ہے۔ دینی ماحول میں سالگرہ منانے کا جو انداز ہے یہ جائز طریقہ ہے، کوئی بھی عقل مند اسے غلط نہیں کہے گا۔ ہاں، اسے سنت و بھرا نہ کہا جائے۔ اس طرح اگر آپ بھی اپنے بچوں کی سالگرہ منائیں تو اسی بہانے کچھ رشتہ داروں کو جمع کر لیں اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی نیاز کر لیں۔ کسی نیک آدمی، مثلا مسجد کے امام صاحب، کسی عالم صاحب یا کسی مبلغ کو بلا کر بچوں کے لیے دعا کروائیں، انشاءاللہ ثواب کا ڈھیروں ڈھیر خزانہ پائیں گے۔ دن بدن عمر میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی؟ سوال: سالگرہ کے موقع پر کہا جاتا ہے بچہ ایک سال اور بڑا ہو گیا، کیا واقعی بچے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے؟ اور ایسے موقع پر اس طرح کے جملے بولنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ جواب: آج کل سالگرہ کے موقع پر لوگ کہتے ہیں بچہ اتنے سال کا ہو گیا اور اتنا بڑا ہو گیا۔ در حقیقت وہ بڑا نہیں ہوتا بلکہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ مثلاً اللہ پاک کے علم میں حسن رضا کی عمر 92 سال ہو اور اب اس نے 3 گزار لیے تو یہ بظاہر بڑا ہوا ہے، اس کو بڑا بولنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ 89 سال کا رہ گیا ہے، یعنی یہ 3 چھوٹا ہو چکا ہے۔ سالگرہ کے موقع پر اس انداز سے بھی عبرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج کل بوڑھے بوڑھے لوگ بھی اپنی سالگرہ مناتے اور خوش ہوتے ہیں، حالانکہ بوڑھا اور خوشی یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ بوڑھا مسکراتا بھی ہے تو اس کے پیچھے غموں کی دنیا ہوتی ہے، اگر وہ ہنستا ہے تو پیچھے صدموں کا طوفان ہوتا ہے، مگر یہ اسی بوڑھے کے ساتھ ہوتا ہے جو حساس طبیعت ہو، جس کے پیش نظر اپنی موت رہتی ہو اور وہ خوف خدا رکھنے والا ہو۔ جو بوڑھے لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، ایسے بوڑھے میری مراد نہیں ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو میری یہ باتیں سمجھ آتی ہیں اور ان کو اس بات کا شعور بھی ہوتا ہے۔ سالگرہ پر غبارے پھوڑنا اور کیک کاٹنا کیسا؟ سوال: سالگرہ پر غبارے پھوڑنا اور کیک کاٹنا کیسا؟ جواب: فی زمانہ تو سالگرہ کے موقع پر لوگوں کا یہی حال ہے کہ خوب کہہ بلند کرتے، زور زور سے ہیپی برتھ ڈے کہتے ہوئے غبارے پھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ غبارہ پھوڑنا اسراف اور ایک فضول چیز ہے، اس میں مال ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ صرف غبارے لگانا ناجائز نہیں بلکہ انہیں پھوڑ کر ضائع کر دینا اسراف ہے، لہٰذا ایسی رسم شروع ہی نہ کی جائے جس سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ ہم لوگ سالگرہ پر نہ تو غبارے لٹکاتے ہیں और ना ही केक काटते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है। मेरी सालगिरह यानी बर्थडे 26 26 रमजान मुबारक को इस्लामी भाई मनाते हैं, मगर मुझे मालूम है कि इससे मुझे खुशी होती है या क्या होता है। मन आनम के मन दानम, यानी मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। इसमें बाद इस्लामी भाई केक काटते हैं, ये केक मुझे भी मिले हैं, मगर मैं ऐसा करने वालों को हर बार समझाता हूँ कि इस बार केक काट लिया मगर आइंदा ऐसा नहीं करना। मैं इस तर्ज अमल को रवाज देना नहीं चाहता, क्योंकि सालगिरह की आम तकारीब में जब केक कटता है तो तालियां बजती, हैप्पी बर्थडे बोलते हुए गले फाड़े जाते और खूब कह कहे लगाकर हंसा जा रहा होता है। ये नहीं मालूम कि इसमें कितनी सुन्नतें छूट रही होती हैं। फिर इन सब से बढ़कर मर्द और औरत का बेपर्दा मिलने जुलने और साथ साथ तालियां बजाने का भी सिलसिला होता है, जबकि मर्द और औरत का बेपर्दा इख्तिलात और तालियां बजाना हराम है। लिहाजा केक काटने और तालियां बजाने के बजाय नातख्वानी का अहतमाम किया जाए। अगर नातख्वानी में किसी का दिल ना भी लगे तो वो तालियां बजाने और इस जैसे दीगर गुनाहों से महफूज रहेगा। इसके कानों में नाते पाके मुस्तफ़ा रस घोलती रहेगी, यूं कुछ तो दिल में उतरेगा, इसकी बरकतें मिलेंगी और इंशाअल्लाह रहमत का वाफिर हिस्सा भी हाथ आएगा। उलमा व सुलहा की बारगाह में बच्चों को ले जाना मुफीद होता है। सवाल, इमामुल हरमैन हजरत सैयदना अब्दुल मलिक बिन अब्दुल्ला जुवैनी रहमतुल्लाहि अलैह हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि अलैह के उस्ताद हैं। इन्हें देखकर ही हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि अलैह इल्म दीन हासिल करने की तरफ माइल हुए थे। ये फरमाते हैं, मुझे जो मकाम व मर्तबा मिला इसका ज़ाहिरी सबब यह है कि मेरे वालिद मुझे उलमा और सुलहा की बारगाह में ले जाया करते थे और इनसे मेरे लिए दुआएं करवाया करते थे। ये इरशाद फरमाइए कि क्या उलमा व सुलहा की बारगाह में अब भी बच्चों को ले जाना और इनसे बच्चों के हक में दुआएं करवाना फ़ायदेमंद है? जवाब, उलमा व सुलहा की बारगाह में बच्चों को ले जाना बेशक फ़ायदेमंद है, इसमें कोई शको शुबा नहीं है। किसी भी नेक आदमी से बच्चों पर नज़र डलवाई और इनके हक में दुआ करवाई जा सकती है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि अलैह ने फतावा रज़विया जिल्द 22 सफ़ा 394 पर कुछ इस तरह तहरीर फरमाया है कि एक मरतबा हज़रत सैयदना शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैह मीना शरीफ में मौजूद मस्जिद खैफ शरीफ की सफ़ों में आ जा रहे थे। किसी ने अर्ज़ की, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इरशाद फरमाया, मैं इसलिए ये कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक के कुछ बंदे ऐसे हैं कि जब उनकी निगाह किसी पर पड़ जाती है तो उसे हमेशा की सआदत अता फरमा देती है। हज़रत सैयदना अल्लामा मोहम्मद अब्दुर्रऊफ मुनावी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, हज़रत सैयदना शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैह अय्याम मीना में मस्जिद खैफ शरीफ में सफ़ों में दौरा फरमा रहे थे। किसी ने वजह पूछी, फरमाया, लिल्लाहि इबादुन इदा नज़रू इला शख्सिन अक्सबूहु सआदतल अबदी फअना अतलुबु ज़ालिक, यानी अल्लाह पाक के कुछ बंदे ऐसे हैं कि जब उनकी निगाह किसी शख्स पर पड़ जाती है तो उसे हमेशा की सआदत अता फरमा देती है, मैं उसी निगाह की तलाश में दौरा करता हूँ। याद रहे, किसी खिलाड़ी फिल्म एक्टर और डांसर से अपने बच्चों को मिलवाना सआदत की बात नहीं बल्कि बर्बादी वाला काम है। अगर कोई शख्स नेकियों के हवाले से मशहूर नहीं मगर वो नमाजी है, दाढ़ी वाला है, इमामा शरीफ सजाता या टोपी पहनता है तो यूं देखकर आम तौर पर अंदाज़ा हो जाता है तो इस तरह का अगर कोई नेक बंदा हो तो उसके पास अपने बच्चों को नज़र डलवाने के लिए ले जाएं, भले दम ना भी करवाएं, सिर्फ उसके सामने बच्चों को खड़ा कर दें या उसके हाथ में दे दें, तो उसकी नेक नज़र पड़ गई और उसने बच्चों को उठाकर चूम लिया तो मदीना मदीना हो जाएगा। जबान की लुकनत दूर करने का वजीफा। सवाल, जिसकी जबान बात करते करते अटकती हो उसके लिए रूहानी वजीफा अता फरमा दीजिए। जवाब, हर नमाज के बाद 7 मरतबा ये 4 आयात पढ़ें। अगर 7 बार नहीं पढ़ सकते तो एक ही बार पढ़ लिया करें। रब्बिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उकदतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। तर्जमा कंजुल ईमान। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर और मेरी जबान की गिरह खोल दे कि वो मेरी बात समझें। पहली आयत के शुरू में लफ्ज़ कौला है। वजीफा करते हुए इस लफ्ज़ को नहीं पढ़ना। अगर पढ़ा तो ये हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अली सलाम के कौल की हिकायत हो जाएगी कि ये उनकी दुआ है। उन्होंने बचपन में मुंह में अंगारा रखा था जिसकी वजह से जबान शरीफ में गिरह पैदा हुई, तो अल्लाह पाक ने उन्हें ये दुआ तालीम फरमाई। अगर बच्चा हकलाता हो और वो ख़ुद ये आयात ना पढ़ सकता हो तो माँ बाप या कोई भी जो सही कुरान पाक पढ़ सकता हो वो पढ़कर उस पर दम कर दें, उस पर दम कर दिया करे, अल्लाह करीम उसकी ज़बान की गिरे खोल देगा। इग़वा से हिफाजत की एहतियाती तदाबीर और औरादो वज़ाइफ़। सवाल, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा इग़वा हो रहे हैं, लिहाजा इस हवाले से एहतियाती तदाबीर और औरादो वज़ाइफ़ बता दीजिए। जवाब, जी हाँ, आजकल बच्चों के इग़वा होने का सिलसिला जारी है। अल्लाह पाक करम फरमाए, पता नहीं बच्चों को क्यों इग़वा किया जा रहा है। मुझे सौती पैगाम ऑडियो मैसेज के ज़रिए एक इस्लामी भाई ने बताया कि हाल ही में जमजम नगर हैदराबाद में एक 6 साल बच्ची को अगवा किया गया और फिर दूसरे दिन उसकी लाश बोरी में बंद टुकड़ों की सूरत में कचरा कुंडी के ढेर से मिली। बेचारी 6 साल बच्ची को इस तरह बेदर्दी के साथ शहीद करके कचरा कुंडी पर डाल देना समझ से बाहर है। उमूमन दुश्मनी और ख़ानदानी मसाइल की बिना पर लोग इस तरह की वारदातें करते हैं। इस वाक़े में बेचारी बच्ची के माँ बाप के लिए बड़े सदमे की बात है। अल्लाह पाक उन्हें सब्र अता फरमाए। इसी तरह तावान की रकमें वसूल करने के लिए जब किसी के बच्चे को उठाया जाता होगा तो उसके पूरे ख़ानदान, कुंबे और कबीले की नींद उड़ जाती होगी। जाहिर है बच्चों के अगवा की वारदातें करने वाले मदनी चैनल नहीं देखते होंगे, क्योंकि अगर देखते तो फिर इस तरह के काम ना करते। बच्चे अगवा करके लोगों को परेशान करने वालों को अल्लाह पाक हिदायत नसीब फरमाए, और काश उन्हें ये सोचने की तौफीक मिल जाए कि बच्चे अगवा करना गुनाह का काम है और इन्हें अनकरीब मरना है। बच्चों को तनहा ना छोड़ा जाए। बच्चों की हिफाजत के लिए एक एहतियाती तदबीर यह है कि बच्चों को तनहा ना छोड़ा जाए और आने जाने में उनके साथ कोई ना कोई बड़ा ज़रूर मौजूद हो, क्योंकि तनहा होने की सूरत में यकीनन उनके अगवा होने का ख़तरा बढ़ जाएगा और किसी बड़े का साथ होने की सूरत में कम हो जाएगा। नीज़ बच्चों को ये तरबियत भी दी जाए कि उन्हें जब कोई पकड़ना चाहे तो वो रोना धोना और चीखो पुकार शुरू कर दें, ताकि अगवा करने वाले इस खौफ से घबरा कर भाग जाएँ कि लोग इकट्ठे होकर इन्हें कहीं पकड़ ना लें, बच्चों का ये जहन भी बनाया जाए कि कोई कितना ही लालच दे, टॉफियां और खिलौने दिखाए, मगर वो उसके साथ ना जाएं। हमें घर में शुरू से ही ये तालीम और तरबियत दी गई कि कोई पैसा या कोई और चीज़ दे, बल्कि मेरी वालदा तो यहाँ तक कहती थी कि अगर कोई सोने का ढेर भी तुम्हारे सामने कर दे तब भी उसके पास नहीं जाना। बच्चों की हिफाजत का वजीफ़ा, बच्चों की हिफाजत का वजीफ़ा ये है कि अव्वल व आखिर एक बार दुरूद शरीफ और 11 बार या हाफिजू या हफीजू पढ़कर अगर बच्चों पर दम कर दिया जाए तो हिफाजत का हिसार मिल जाएगा और इंशाअल्लाह कोई इन्हें अगवा नहीं कर पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस रूहानी इलाज के तहत मुल्क व बैरून मुल्क सैकड़ों बल्कि हज़ारों बस्ते कायम हैं और आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना कराची में भी बस्ता कायम है। लिहाजा तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों से हिफाजत का तावीज़ हासिल करके बच्चों को पहना दिया जाए ताकि अगर कोई इन्हें अगवा करना चाहे तो उस वक्त उन्हें चीखो पुकार याद आ जाए और वो चीखना पुकारना शुरू कर दें या अल्लाह पाक उनकी मदद के लिए किसी को भेज दे और अगवा करने वाले उसे देखकर भाग जाएं या अगवा करने के लिए जब वो बच्चों की तरफ हाथ बढ़ाएं तो उन पर खौफ तारी हो जाए और वो उल्टे पांव भाग खड़े हों तो तावीज़ की बरकत से अल्लाह पाक की तरफ से इस तरह के असबाब पैदा हो सकते हैं और यूं तावीज़ के ज़रिए बच्चों की हिफाजत की सूरत बन सकती है। बड़ों की हिफाजत का वजीफ़ा, बड़ों के लिए हिफाजत का वजीफ़ा ये है कि जब वो वज़ू करें तो हर उज़्व धोते वक्त एक बार या क़ादिरु पढ़ लिया करें। मसलन जब वज़ू शुरू करें तो सीधा और उल्टा हाथ धोते वक्त एक बार या क़ादिरु पढ़ लें। इस तरह जब एक बार कुल्ली कर लें तो दूसरी बार कुल्ली करने से पहले एक बार या क़ादिरु पढ़ लें। फिर जब एक बार नाक में पानी चढ़ा लें तो अब रुक जाएं और एक बार या क़ादिरु पढ़कर मजीद दो बार नाक में पानी चढ़ा लें। इसी तरह हर उज़्व धोते वक्त और सर का मसहा करते वक्त एक बार या क़ादिरु पढ़ लें। इसके साथ साथ दुआएं भी पढ़ाई जा सकती हैं मगर दुआओं की जगह दुरूद शरीफ पढ़ना अफजल है, लिहाजा दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अगर लोग इस तरह एहतियातें बरतेंगे और औरादो वज़ाइफ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बेहतरियां आएंगी। बेसन पर वुजू करते हुए या क़ादिरु पढ़ना कैसा? सवाल, क्या वॉशरूम में बेसन पर वुजू करते हुए भी या क़ादिरु पढ़ सकते हैं? जवाब, आजकल पैसे वाले लोगों के घरों में आसाइशों का पूरा इंतज़ाम होता है और ज़बरदस्त डेकोरेशन होती है। इसी तरह मुतवस्सित यानी दरमियाने तबके के लोगों और जो सिर्फ नाम के गरीब होते हैं उनके घरों में भी डेकोरेशन और सजावटें होती हैं मगर वुजू खाना नहीं होता। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता लोगों में से भी किसी किसी के घर वुजू खाने का एहतिमाम होता है। हालांकि घरों में वुजू खाना बनाने की बारहा तरगीब दिलाई गई है और रहनुमाई के लिए मकतबतुल मदीना के शाया करदा वुजू का तरीक़ा नामी रिसाले में वुजू खाने का नक्शा भी छापा गया है। आम तौर पर घरों में बेसन पर वुजू किया जाता है और बेसन वॉशरूम के साथ बना होता है। याद रखिए, अगर बेसन वॉशरूम के साथ बना हुआ हो तो वुजू करते हुए या क़ादिरु और वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकते, चूँकि वुजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है और फ़कत अल्लाह पाक का नाम लेना सुन्नत मुअक्कदा है। इसलिए वॉशरूम में लगे हुए बेसन पर वुजू करने के बाइस अगर इसे छोड़ने की आदत बनाएंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे। लिहाजा ऐसी सूरत में बिस्मिल्लाह पढ़ने के लिए वॉशरूम से बाहर निकलना ज़रूरी हो जाएगा। डब्ल्यूसी और बेसन दोनों को अलग अलग कीजिए। अगर वॉशरूम का इहाता बड़ा हो तो डब्ल्यूसी या कमोड को स्लाइडिंग डोर या ग्लास यानी शीशा लगाकर इस तरह कवर कर लें कि ये देखने में अलग लगे। तो इस सूरत में बेसन पर वुजू करते हुए या कादिरू और बिस्मिल्लाह पढ़ने में हर्ज नहीं। याद रहे, खाली प्लास्टिक का पर्दा लगाकर डब्ल्यूसी या कमोड को कवर करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए किसी सॉलिड चीज़ मसलन लकड़ी, सीमेंट, एल्युमिनियम या हार्डबोर्ड की दीवारें लगाकर कवर करना ज़रूरी है। मैंने अपने घर के वॉशरूम में और फैज़ान मदीना में अपने ज़ेरे इस्तेमाल वॉशरूम में डब्ल्यूसी को इसी तरह कवर किया हुआ है। मुझे कभी कभार जब अरबपति लोगों के घरों में जाने का इत्तेफाक होता है तो वुजू करने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि बेसन पर खड़े खड़े वुजू करना पड़ता है। जब घरों में बेसन पर वुजू करना पड़ता है, या तो उन घरों में बड़े बूढ़े नहीं होते होंगे या फिर बेचारे खड़े खड़े वुजू करते होंगे, जिसके बाइस बेचारों की टांगों में दर्द हो जाता होगा और बसा औकात वो गिर भी पड़ते होंगे। ख्याल रहे कि जब बूढ़ा आदमी गिरता है तो अगर उसकी किसी नाजुक जगह पर चोट आ जाए या फिर हड्डियां टूट जाएं तो वो उठ नहीं सकता, बल्कि उसे कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ता है और फिर बेचारे को तकलीफें उठाकर जिंदगी के साल दो साल पूरे करने पड़ते हैं, क्योंकि कमज़ोर होने के बाइस हड्डियां आसानी से जुड़ती नहीं हैं। आजकल घरों में लोग तरह तरह की आसाइशें, स्विमिंग पूल और हौज बनाते हैं, मगर वुजू खाना बनाने के लिए उनके पास दो गज जगह नहीं होती। अपने घरों में ऐसी जगह कि जहां वुजू करने में सुस्ती ना हो, मस्जिद के वुजू खाने की तरह एक वुजू खाना बनाइए और इसमें एक या दो नल लगाइए। इंशा अल्लाह वुजू करने में बहुत सहूलत हो जाएगी। अगर इस नीयत से अपने घर में वुजू खाना बनाएंगे कि अल्लाह पाक का नाम ले सकें, दुरूद पाक पढ़ सकें और या कादिरु पढ़ सकें, तो ये वुजू खाना बनाना भी इबादत बन जाएगा। वुजू खाना किस तरह बनाया जाए, इसके लिए दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना से वुजू का तरीक़ा नामी रिसाला हासिल करके इसका मुताला कीजिए। इस रिसाले में वुजू खाना बनाने के मदनी फूल और तस्वीर भी दी गई है कि किस तरह वुजू खाना बनाना है। कार्टून वाली चप्पल पहनना कैसा? सवाल, आजकल बच्चे कार्टून वाली चप्पल और कार्टून वाले खिलौने लेने की जिद करते हैं, जबकि हमने बड़ों से सुना है कि कार्टून वाली कोई चीज़ घर में नहीं रखनी चाहिए। इस बारे में शरई रहनुमाई फरमा दीजिए। जवाब, जो कार्टून किसी जी रूह यानी जानदार, मसलन किसी ऐसे जिंदा इंसान या जानवर की हिकायत करे जो पाया जाता हो, तो ऐसा कार्टून बनाना नाजायज़ और ममनू है, क्योंकि वो तस्वीर के हुक्म में है। रहा तस्वीर वाले जूतों का मामला, तो जूते में जैसी भी तस्वीर हो, भले किसी इंसान की सही तस्वीर भी हो, तब भी अगर बच्चा वो जूता पहनता है तो कोई ममानअत नहीं है, क्योंकि जूता तौहीन की जगह है। इस पर मौजूद तस्वीर न रहमत के फरिश्तों के लिए रुकावट है और न ही नमाज में इससे कोई मसला होगा। अलबत्ता जूते पर जानदार की तस्वीर बनाने वाला गुनाहगार है। जायज़ खिलौनों से खेला जा सकता है, लेकिन उन्हें तौहीन की जगह पर रखा जाए। बाज़ लोग खिलौनों के लिए घर में शोकेस या खाने बनवाते हैं और उनमें ऐसी तस्वीर वाले खिलौने रखते हैं जो जानदार की हिकायत कर रहे होते हैं। इस पर वईद है और इनकी वजह से रहमत के फरिश्ते घर में दाखिल नहीं होते। अलबत्ता ऐसे खिलौने अगर इधर उधर पड़े हों और ठोकरों में आ रहे हों तो फिर ममानअत नहीं है। बच्चों के साथ नरमी कीजिए। सवाल, क्या खेलने कूदने वाले छोटे बच्चों को वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए? जवाब, छोटे बच्चों को भी वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। अभी से खिदमत करेंगे तो बड़े होकर भी करेंगे। नीज़ इससे माँ बाप की दुआएं मिलेंगी और वो खुश भी होंगे। अलबत्ता माँ बाप को चाहिए कि बच्चे की ताकत और हिम्मत के मुताबिक खिदमत लें, इतनी खिदमत ना लें कि बच्चे पर बोझ पड़ जाए और वो थक जाए। जब बच्चा खिदमत करे तो वालिदैन को चाहिए कि उसकी दिलजोई और हौसला अफजाई करें। दिलजोई सवाब का काम है और हौसला अफजाई बच्चे की पगार है। दिलजोई का दुनियावी फ़ायदा ये होता है कि बच्चा ज़्यादा काम करता है और खुश दिली के साथ करता है। जब तक बच्चे की हौसला अफजाई नहीं होगी वो तरक्की नहीं करेगा। अगर बच्चे को टोकते रहेंगे और तनकीद करते रहेंगे तो वो दिल तोड़कर बैठ जाएगा। बच्चा कभी बहुत अच्छा काम कर ले तो उसे इनाम भी देना चाहिए और दुआएं भी देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हर वक्त बच्चे को कोसते और पीटते रहें, क्योंकि अगर कबूलियत की घड़ी हुई और उसको बददुआ लग गई तो रोना भी आपको पड़ेगा। जो वालिदैन हर वक्त अपने बच्चों को डांटते रहते हैं उनमें इल्म और तरबियत की कमी होती है। माँ बच्चों के अब्बू का जहन बनाएगी कि तुमने इसको सर पर चढ़ाकर रखा है, तुम इसको कुछ बोलते नहीं हो, इसे मारते नहीं हो, इसकी पिटाई करो, बाप का रोब होता है, सख्ती करो। अगर बाप इन बातों में आ जाए तो औलाद आगे चलकर ऐसी बागी होती है कि बड़ी होकर माँ बाप को ओल्ड हाउस का रास्ता दिखाती है। माँ बाप की अपनी भलाई इसी में है कि नरमी करें और प्यार करें। ठीक है कि ज़रूरतन शरीयत की हद में रहकर सख्ती भी की जा सकती है, लेकिन बात बात पर डांट डपट और टोक टाक ठीक नहीं होती, बल्कि नुकसान देह होती है। बच्चे ज़िद क्यों करते हैं? सवाल। छोटे बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं। इनकी ऐसी तरबियत किस तरह की जाए कि ज़िद्दी ना बने? और जब ये ज़िद कर रहे हों उस वक्त ऐसा क्या किया जाए कि ये ज़िद से बाज आ जाए? नीज़ बच्चों की तरबियत के हवाले से रहनुमाई फरमा दीजिए। जवाब। अगर ये ज़िद नहीं करेंगे तो इन्हें बच्चा कौन बोलेगा? बच्चे कुछ ना कुछ ज़िद तो करते ही हैं, इनसे बड़ों को सीखना चाहिए। गोया वो ज़िद करके अपने बारे में बता रहे होते हैं कि मैं बच्चा हूँ, लेकिन आप बच्चे नहीं हैं, लिहाजा आप ज़िद ना किया करें। यानी ज़िद करना बच्चों का काम है, बड़ों का काम नहीं है। बच्चों के मुस्तकिल तौर पर ज़िद्दी बन जाने की वजह ये होती है कि वालिदैन शुरू से ही इनकी हर ज़िद पूरी करते आ रहे होते हैं, तो बच्चे बड़े होकर भी इसी आदत में मुब्तला रहते हैं। शुरू शुरू में बच्चा बहुत प्यारा लगता है, जो मांगता है उससे बढ़कर दिला दिया जाता है, लेकिन कुछ बड़ा होने के बाद उसकी हर मांग पूरी नहीं की जाती। इस तरह बच्चे के जहन में ये बात बैठ जाती है कि पहले जो मांगता था मिल जाता था, लेकिन अब मेरे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते। यूं वो ज़िद शुरू कर देता है। बाज़ औक़ात वाकई खामखा की ज़िद कर रहा होता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये हल नहीं है कि बच्चे को मार पीट शुरू कर दी जाए, बल्कि इसका इलाज ये है कि बच्चे की ज़िद पूरी करना छोड़ दें। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत निकल जाएगी। इसमें यह भी ना हो कि एकदम से बच्चे को सब कुछ दिलाना छोड़ दें, बल्कि कभी कभी ज़िद पूरी भी कर दिया करें, वरना बच्चा बागी और वालिदैन से बदज़न हो जाएगा। इसके जहन में गैर महसूस तौर पर यह बात जम जाएगी कि मेरे माँ बाप मुझ पर जुल्म करते हैं। ऐसे ही बच्चे होते हैं जो बड़े होकर कहते सुनाई देते हैं कि हमें हमारे वालिदैन का प्यार नहीं मिला। बेहतरी इसी में है कि हिकमत अमली से अपने बच्चों की ज़िद की आदत ख़त्म करें। याद रखिए, यह आदत एकदम ख़त्म नहीं हो सकती। बाज़ वालिदैन अपनी औलाद के साथ इंतहाई नामुनासिब रवैया अख्तियार करते हैं, इनको बात बात पर झाड़ते हैं, बल्कि मार धाड़ भी करते हैं, इनकी कोई ज़िद पूरी नहीं करते, इनका मान नहीं रखते, खर्चा करते हैं लेकिन बच्चे के कहने पर नहीं करते, अपने तौर पर जो समझ आता है करते रहते हैं। इस तरह बच्चे अपने वालिदैन से बागी हो जाते हैं और फिर बेचारे नाफरमानी पर उतर कर अपनी आखिरत ख़राब कर बैठते हैं। बच्चों की ज़िद दूर करने का रूहानी इलाज। बच्चा अगर ज़िद करता हो और वालिदैन में से कोई सही कुरान पाक पढ़ना जानता हो तो रोज़ाना एक एक बार या तीन तीन बार सूरह फलक और सूरह नास अव्वल आखिर एक बार या तीन बार दुरूद शरीफ पढ़कर बच्चे पर दम करें, इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। हाउ और भाव कौन है? सवाल। बड़े बाज दफ़ा बच्चों को डराने के लिए कहते हैं कि भाव आ जाएगा या भाव आ जाएगा या हाउ से ले जाएगा। ये हाउ और भाव कौन है जो नज़र भी नहीं आते और बच्चे इनसे डरते भी हैं? जवाब। ये हाउ और भाव फर्जी नाम है, इनका कोई वजूद नहीं है। बच्चों को इस तरह बोलना कि भाव आ जाएगा, तुझे ले जाएगा या तुझे फ़कीर ले जाएगा, वो देखो भाव, बाज़ सूरतों में झूठ भी होता है और माँ बाप के नामा आमाल में गुनाह लिखा जाता है। मज़ीद इसका नुकसान ये होता है कि बच्चा डरपोक हो जाता है और उसके दिल में डर बैठ जाता है, फिर फजर के लिए अंधेरे में निकलने से भी डरता है। बच्चों को बहादुर बनाना चाहिए, डरपोक नहीं बनाना चाहिए। बाज़ औक़ात माँ बाप बच्चे से कहते हैं कि तुम्हें खिलौना ला कर देंगे, बिस्किट देंगे, चॉकलेट देंगे, ये देंगे और वो देंगे, और नीयत ये होती है कि सिर्फ बहला रहे हैं, लाकर नहीं देंगे। इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब को सच्चा कर दे। बग़ैर इजाज़त अब्बू की बाइक चलाना कैसा? सवाल। बाज़ बच्चे बग़ैर पूछे अपने अब्बू की बाइक चलाते हैं और ख़ामोशी से आकर खड़ी कर देते हैं, ऐसा करना कैसा? जवाब। इसमें तीन गलतियां सामने आ रही हैं। एक तो ये कि अब्बू की इजाज़त के बग़ैर बाइक ली, जाहिर है कि इसमें उनकी रिजामंदी नहीं होगी और उन्हें पता चलेगा तो नाराज़ भी होंगे। दूसरी गलती ये कि बग़ैर लाइसेंस गाड़ी चलाई, जबकि तीसरी गलती ये की कि छोटी उम्र में गाड़ी चलाई, क्योंकि 18 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ी चलाना मना है, एक्सीडेंट का ज़्यादा खतरा होता है और 18 साल से कम उम्र बच्चों का लाइसेंस भी नहीं बनता। बग़ैर इजाज़त और वो भी छोटी उम्र में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि इसमें जान का ख़तरा भी है और गाड़ी टूट फूट का शिकार हो सकती है, जिसमें अब्बू का नुकसान है। अगर किसी को टक्कर मार दी या किसी का नुकसान कर दिया तो फिर केस हो जाएगा और कराची में तो बच्चों की भी जेल है। ऐसा करने पर बच्चा छूट कर नहीं जा सकेगा और उसे जेल में डाल दिया जाएगा। फिर अम्मी अब्बू और ख़ानदान वाले अलग परेशान होंगे, रोने धोने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और जेल से जाने नहीं दिया जाएगा। इन सब चीज़ों में ना जाने कितना पैसा भी खर्च हो जाएगा, इसलिए खूब एहतियात करनी है और मुल्क व शरीयत का कानून भी नहीं छोड़ना। बच्चों को भी दूसरों को सलाम करना चाहिए। सवाल। बाज़ बच्चे सलाम करने में शर्माते हैं, हमें किस किस को सलाम करना चाहिए? जवाब। बच्चों को भी सलाम करना चाहिए ताकि आदत पड़े। जो भी बड़े हैं, जैसे अम्मी अब्बू, बाजी भाई, चाचू, अंकल, आंटी और पड़ोस में रहने वाले, बल्कि जो भी मुसलमान हैं, उन्हें आमना सामना होने पर या मौका मिलने पर सलाम करना चाहिए। कोई घर आए तो सलाम करें, किसी के घर जाएं तो सलाम करें। अभी से आदत डालेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम आगे चलकर ये आदत काम आएगी। फरमाने अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुम लालिया, बच्चों, बूढ़ों और मरीजों को प्यार दीजिए।